रात को तेज के बुलाने पर वेद को अंकुश से मिलने के लिए जाना ही पड़ा, लेकिन अंकुश से मिलने के बाद वो वापस घर नहीं पहुंचा था। अगली सुबह शिवांशा की नींद टूटी तो उसने खुद को अपने कमरे में पाया। ऊपर से वो बेड पर लेटी हुई थी। आसपास देखने पर शिवांशा ने महसूस किया कि वेद उसके करीब नहीं था। शिवांशा जल्दी से उठी और उसने बाथरूम का दरवाज़ा चेक किया तो वो भी खुला ही था। जिम एरिया में भी वेद नहीं था और फिर वो उसे ढूंढते हुए नीचे जाने लगी। मुझे तो उठने में भी ज़्यादा देर नहीं हुई और रात को मैं नीचे कब आई, ज़रूर वेद ही नीचे लेकर आए होंगे, लेकिन इस वक्त वो कहाँ हैं? उलझन में खुद से बड़बड़ाते हुए शिवांशा नीचे पहुँच गई थी। उसने इधर उधर देखा तो वहाँ भी वेद नज़र नहीं आ रहा था। तभी आराध्या की नज़र शिवांशा पर गई। वो परेशान लग रही थी और उसे देखकर लग रहा था कि नींद से उठते ही सीधे वो नीचे पहुंच गई थी। क्या हुआ भाभी, आप कुछ ढूंढ रही हैं? आराध्या ने उसके पास बढ़ते हुए पूछा। हाँ, वो वेद रूम में नहीं है, शिवांशा ने हल्की घबराई आवाज़ में कहा। उसी वक्त अक्षत भी वहाँ पर पहुँच गया था और उसने शिवांशा की घबराहट भरी आवाज़ सुन ली थी। वो मुस्कुराते हुए उसके पास आकर बोला, अच्छा तो फिर कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ऊपर उस रोमांटिक सेटअप के अंदर है जो कल उन्होंने आपके लिए करवाया था? वैसे आपको बता दूं, मैंने भी उसमें हेल्प की थी, भले ही कोई मुझे क्रेडिट न दे। आराध्या ने उसके हाथ पर हल्का सा मारा और प्यार से डांटते हुए बोली, क्या तुम थोड़ी देर के लिए भी उन्हें तंग करना बंद नहीं कर सकते? दिख रहा है ना, वो परेशान लग रही हैं। क्या भाभी, कभी कभी तो मौका मिलता है जब वेद भाई आसपास नहीं होते, वरना उनके होते हुए कोई भाभी को कुछ कह दे, इतनी किसकी मजाल? अक्षत ने हल्के लहजे में जवाब दिया। अक्षत और आराध्या के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वे शिवांशा को जानबूझकर छेड़ रहे थे, लेकिन अभी भी शिवांशा की भौंहें सिकुड़ी हुई थी और वो दरवाजे की तरफ देख रही थी। इससे पहले कि अक्षत आगे कुछ और कहकर उसे छेड़ता, आराध्या की नज़र शिवांशा पर गई। उसने अक्षत को इशारे से चुप रहने को कहा। आराध्या ने शिवांशा के हाथ को पकड़ा और उसे सहलाते हुए गंभीर आवाज में कहा, हो सकता है रात को कोई काम आ गया होगा और उन्हें जाना पड़ा होगा, ऐसा अक्सर होता रहता है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। अभी कुछ घंटे में भाई आ ही जाएंगे, आप उन्हें कॉल क्यों नहीं कर लेती? आराध्या के कहने पर शिवांशा को ख्याल आया कि अब उसके पास भी मोबाइल था और वेद के लिए इतना परेशान होने से पहले वो आराम से उसे कॉल करके पूछ सकती थी। मेरा इस तरफ ध्यान नहीं गया, मुझे लगा वो नीचे होंगे, शिवांशा ने मासूमियत से जवाब दिया। वो जाने के लिए दूसरी तरफ मुड़ ही रही थी कि तभी वेद उसे दरवाजे से अंदर आते हुए दिखाई दिया। शिवांशा वहीं पर रुक गई थी। वेद ने अपना जैकेट कंधे पर डाल रखा था और शर्ट की स्लीव्स भी फोल्ड कर रखे थे। उसके बाल बिखरे हुए थे और सूजी हुई आंखें बता रही थीं कि वो पूरी रात नहीं सोया था। शिवांशा बिना किसी की परवाह किए जल्दी से वेद के पास गई। उसके ऐसा करने पर अक्षत ने धीरे से आराध्या के कान के पास आकर कहा, ये दोनों साथ में बहुत क्यूट लगते हैं। हाँ, लेकिन गलती से भी भाई के सामने भाभी को परेशान मत करना, वरना जब वो तुम्हें डांटते हैं और तुम्हारा मुंह बन जाता है तब तुम भी मुझे बहुत क्यूट लगते हो, आराध्या ने हंसकर कहा। आराध्या अक्षत का हाथ पकड़कर उसे खींचकर वहां से लेकर चली गई। वो नहीं चाहती थी कि शिवांशा और वेद के इस मोमेंट में अक्षत किसी भी तरह से उन दोनों को परेशान करे। वहीं शिवांशा वेद के पास पहुंची। आप कहाँ चले गए थे और जाने से पहले आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आपको पता भी है, जब मैं सुबह उठी तब मुझे खुद को रूम में देखकर कितना अजीब लग रहा था, और ऊपर से आप भी पास में नहीं थे, आप पूरी रात सोए क्यों नहीं? शिवांशा ने वेद के सामने शिकायतों की झड़ी लगा दी थी, जबकि वो उसके चेहरे की तरफ गौर से देख रहा था। मैं कुछ पूछ रही हूँ, मेरी तरफ देखना बंद कीजिए और जवाब दीजिए, शिवांशा ने उसे डांटते हुए तेज आवाज में कहा। हड़बड़ाहट में शिवांशा को खुद भी एहसास नहीं हुआ कि कब उसकी आवाज तेज हो गई थी और आसपास काम करने वाले हाउस हेल्पर्स के हाथ वहीं पर रुक गए थे। पहले भले ही उनका ध्यान वेद और शिवांशा की तरफ ना हो, लेकिन अब वे उनकी तरफ देखने लगे थे। वेद की नजरें उन सब की तरफ गईं तो उसने उनकी तरफ घूर कर देखा। सब वापस अपने काम में लग गए थे। वहीं वेद ने शिवांशा की तरफ देखा और अपने हाथ सीने पर बांधते हुए कहा, अच्छा तो तुम्हें गुस्सा भी आता है और इस तरह डांटना भी? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ, प्लीज बता दीजिए ना, आप ठीक है ना? शिवांशा ने चिढ़ते हुए कहा। तुम्हें मुझे देखकर क्या लग रहा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपने पैरों पर चलकर आया हूँ, तो मुझे क्या हो सकता है? और दूसरी बात, मैं किसी काम में फंस गया था, इस वजह से पूरी रात बाहर रुकना पड़ा, वेद ने काफी शांत लहजे में जवाब दिया। शिवांशा ने उसकी बात पर हामी भरी। वो सामान्य रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब कल लीला ने उसे बताया कि अंकुश जेल से भाग गया है तो शिवांशा को वेद की फिक्र हो रही थी। शिवांशा आगे कुछ पूछती उससे पहले वेद बोला, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, सबके साथ ब्रेकफास्ट करो, मैं सोने जा रहा हूँ। शिवांशा को आगे कुछ पूछने का मौका नहीं मिला, लेकिन जैसे ही वेद उसके सामने से ऊपर जा रहा था तभी शिवांशा की आंखें छोटी हो गई थीं। वेद के कंधे पर एक लिपस्टिक का मार्क था। शिवांशा को अच्छे से याद था कि कल वो वेद के करीब जरूर आई थी, लेकिन उसने इस कलर की लिपस्टिक नहीं लगा रखी थी और ना ही उसका लिप मार्क उसके पीछे इस तरह लगा था। वेद, शिवांशा ने पीछे से हिचकिचाते हुए कहा, जिस पर वेद के कदम वहीं पर रुक गए थे। वेद ने शिवांशा की तरफ पलट कर देखा और फिर भौंहें उठाकर पूछा, क्या हुआ? क्या आप पूरी रात बिल्कुल भी नहीं सोए थे? शिवांशा ने वेद की तरफ बढ़ते हुए पूछा। इस वक्त उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। हाँ, मैंने अभी तुम्हें बताया ना कि मैं किसी काम में फंस गया था। और तुम्हें क्या हो गया है जो अचानक से मेरे लिए इतना परेशान हो रही हो? देखो, मैं बच्चा नहीं हूँ और मेरे आसपास हर वक्त सिक्योरिटी रहती है, वेद ने उसे समझाया। क्या कल रात भी आपके साथ सिक्योरिटी गार्ड्स या प्रतीक भैया थे? शिवांशा ने झट से पूछा। नहीं, कल रात नहीं थे, क्योंकि मैं अचानक गया था और उन्हें बुलाने का मौका नहीं मिला। अगर तुम्हारा इंटेरोगेशन खत्म हो गया है तो मैं ऊपर जाऊं, वेद ने जवाब में कहा। जहां हमेशा वो शिवांशा के सवालों के जवाब काफी शांत लहजे में देता था, वहीं अब उसकी आंखों में झुंझलाहट नजर आ रही थी और ये रात भर ना सोने की वजह से था। शिवांशा ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया था। वेद तुरंत कमरे में चला गया था, जबकि शिवांशा भी उसके पीछे पीछे ऊपर आ गई थी। ऊपर आते ही वेद ने अपना मोबाइल बाहर रखा और फिर बाथरूम में चला गया था। शिवांशा अलमारी के पास खड़ी वेद के मोबाइल को घूर रही थी। वो उसे चेक करना चाहती थी, लेकिन साथ ही उसे अजीब लग रहा था कि वो वेद पर शक कर रही है। कुछ नहीं होता है, मुझे इन पर पूरा यकीन है, जरूर किसी काम में ही होंगे, और मोबाइल चेक करना शक करना नहीं होता है, शिवांशा ने खुद से बड़बड़ाकर कहा और कांपते हाथों से वेद के फोन को उठा ही लिया था। उसका बस चलता तो वो जल्दी जल्दी वेद का पूरा मोबाइल खंगाल लेती, लेकिन मोबाइल लॉक था और वो उसका पासवर्ड भी नहीं जानती थी। शिवांशा का मुंह बन गया था, तभी उसकी नजर स्क्रीन पर अभी अभी आए एक मैसेज की तरफ गई। तुम घर पहुंच गए हो ना, थैंक्स पूरी रात मेरे साथ रुकने के लिए, मैसेज के आगे एक लाल हार्ट इमोजी बनाया हुआ था। शिवांशा ने जल्दी से वेद का मोबाइल नीचे रख दिया था। मैसेज पढ़ने के बाद शिवांशा की आंखें नम होने लगी और उसके दिमाग में बुरे बुरे ख्याल चलने लगे।
ये मैसेज किसने किया होगा? नाम पूरा सेव क्यों नहीं था? और वेद ने मुझे झूठ क्यों बोला कि वो किसी काम में फंस गए थे? वो किसी लड़की के साथ थे और उसी के साथ पूरी रात बिताई, तो यही वजह है कि वो मेरे पास नहीं आते और कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे दूर करते रहते हैं। मैंने देखा नीचे, वो मुझसे इरिटेट हो रहे थे, शिवांशा ने रोते हुए कहा। अचानक शिवांशा को दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो वो जल्दी से दौड़कर अलमारी के पास खड़ी हो गई थी। वो अपने कपड़े निकालने का दिखावा कर रही थी ताकि वेद उसकी तरफ ना देख सके। अगर ये पूछेंगी तो बोल दूंगी कि मैंने उनके मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाया और कोई भी बहाना बना दूंगी, लेकिन मुझे रोना आ रहा है। मैं उनके सवालों के जवाब कैसे दूंगी? अगर इन्होंने पूछा कि मैं क्यों रो रही हूं तो क्या बताऊंगी? शिवांशा मन ही मन बहाने सोचने लगी कि वो वेद के पूछने पर क्या जवाब देगी, लेकिन वेद ने उसे कुछ पूछना तो दूर की बात है, उसकी तरफ देखा तक नहीं। वो अपने रूम में बेड एरिया की तरफ गया और उसने उस तरफ की लाइट्स बंद कर दी थीं। इससे शिवांशा की चिढ़ और गुस्सा और भी बढ़ गया था। एक तो वेद उसे झूठ बोल रहा था, ऊपर से वो उससे नजरें चुरा रहा था। शिवांशा ने अपने कपड़े निकाले और जल्दी से बाथरूम में आ गई थी। नहाने से पहले वो वेद के बर्ताव के बारे में सोचकर दुखी होकर काफी देर तक रोई थी, और साथ ही उसे अब मन ही मन ये लगने लगा था कि वेद उसके करीब इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उसकी लाइफ में पहले से ही कोई और है। वहीं इन सबसे बेखबर वेद आराम से सोया हुआ था। दूसरी तरफ अरमान और नव्यांशी रात के बाद से एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। रात को नव्यांशी के बर्ताव से यही जाहिर हो रहा था कि वो अरमान को लेकर कुछ अलग फील करने लगी है, जबकि अरमान इन सब से बच रहा था। ऐसा नहीं था कि उसे नव्यांशी पसंद नहीं थी, लेकिन साथ ही वो अच्छे से जानता था कि उन दोनों का फ्यूचर साथ में नहीं हो सकता था। अरमान मनन की जिम्मेदारियों से बंधा हुआ था, उससे भी बढ़कर उसकी खुद की लाइफ ठीक से स्टेबल नहीं थी। वो नव्यांशी को वो लाइफस्टाइल और जिंदगी कभी नहीं दे पाता जो फिलहाल वो बिता रही थी। नव्यांशी ने भी इस चीज को नोटिस किया। अरमान ने सुबह ब्रेकफास्ट भी अपने वर्कस्पेस में किया था और अब दोपहर होने को आई थी, वो एक बार भी बाहर नहीं निकला था। नव्यांशी पहले खुद ही अपने प्रोजेक्ट में बिजी थी, इसलिए उसका इस तरफ ध्यान नहीं गया, लेकिन पिछले एक घंटे से वो पूरी तरह फ्री थी और अरमान का इस तरह एक बार भी बाहर ना आना उसे अंदर ही अंदर खल रहा था। मनन, क्या तुम जाकर देख सकते हो कि अरमान क्या कर रहा है? नव्यांशी ने मनन के पास आकर पूछा। उसकी नजरें अरमान के वर्कस्पेस पर टिकी हुई थी। पहले भी वो बिना अरमान के इजाजत के वहां गई थी। नव्यांशी को डर था कि अगर वो दोबारा गई तो अरमान गुस्सा हो जाएगा। वैसे भी कल रात उसने यही कहा था कि वो उस तरफ नहीं जाएगी। अगर तुम्हें कोई काम है तो तुम खुद जाकर देख लो। तुम हमेशा सारे काम मुझसे क्यों करवाती रहती हो? मैं अरमान को तुम्हारी शिकायत लगाऊंगा कि तुमने मुझे अपना पर्सनल सर्वेंट बना लिया है, मनन ने रूखे तरीके से जवाब दिया, जो इस वक्त पूरी तरह गेम खेलने में बिजी था। नव्यांशी ने उसकी तरफ घूर कर देखा और चिढ़कर जवाब में कहा, एक तो छोटे मोटे काम क्या करवा लिए, तुम तो मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो। ठीक है, आगे से मैं भी तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगी। नव्यांशी उससे नाराज होकर कहीं सोफे पर बैठ गई थी तो वहीं उसे इस तरह परेशान देखकर रोहन ने पूछा, क्या मैं जाकर देख कर आऊं कि अरमान भैया क्या कर रहे हैं? नहीं रहने दो, कल को तुम कहोगे कि मैंने तुम्हें भी अपना पर्सनल सर्वेंट बना लिया है, अचानक नव्यांशी के मुंह से निकला। उसे तुरंत ही अपनी गलती का एहसास हो गया था कि उसने अपने गुस्से में रोहन के साथ काफी बेरुखी से बात की थी। नव्यांशी ने सांस ली और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, तुम अपना काम करो, मैं खुद देख लूंगी। और फिर मनन की तरफ इशारा करते हुए बोली, कुछ सीखो इससे, ये भी काम चोर है, तो तुम भी थोड़ा आराम किया करो, सारा दिन कुछ ना कुछ करते रहते हो। लेकिन मुझे खुद को बिजी रखना पसंद है, रोहन ने शांत लहजे में जवाब दिया। और तुमने काम चोर किसे कहा? मनन ने उसकी तरफ घूर कर देखा और बोला, तुम काम चोर हो, तुम्हारे ब्रेकफास्ट की प्लेट भी मैंने साफ की थी, अपना रूम क्लीन करने के लिए तुम्हें सामान चाहिए था वो भी तुम खुद लेने नहीं गई, मुझसे मंगवाया था, और फ्रूट्स खाने के लिए फोक भी मैंने ही तुम्हें लाकर दिया था। तुम बहुत बुरी हो नव्यांशी, मैं अरमान को कहूंगा कि वो तुम्हें हमारे घर से निकाल दे। नव्यांशी की आंखें जल्दी से बड़ी हो गई थी और वो जानती थी कि मनन को गुस्सा दिलाना सही नहीं था। अरे नहीं, मैं बस मजाक कर रही थी और मेरे मुंह से निकल गया, नव्यांशी ने तुरंत सॉरी कहते हुए कहा। ठीक है, अगर तुम सच में सॉरी फील कर रही हो तो जाओ अरमान के लिए जूस लेकर जाओ, फिर मैं समझ जाऊंगी कि तुम भी मेरे कुछ काम करती हो, मनन ने सिर हिलाकर कहा। मजबूरन नव्यांशी को उसकी बात माननी ही पड़ी और जब वो अरमान के पास जा रही थी तो उसके दिल की धड़कनें इस वक्त बेकाबू होकर धड़क रही थी। नव्यांशी ने अपनी मुठ्ठियां कसकर बंद कर ली और मन ही मन यही प्रार्थना कर रही थी कि वो अरमान से अच्छे से आई कॉन्टैक्ट करके बात कर सके। ओके, फिलहाल के लिए इतना ही। क्या लगता है वेद की लाइफ में कौन आया होगा? जो भी हो, बेचारी शिवांशा का दिल बुरी तरह टूट गया। चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। अगले पार्ट पर मिलते हैं।